نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم محترم بزرگوں اور بھائیوں ہر آدمی کے ساتھ اللہ پاک نے دو چیزیں اس دنیا میں لگائی ہیں ہر انسان کے ساتھ ہیں وہ بہت ہی اہم ترین بات ہے ایک چیز انسان کے ساتھ انسان کی خواہشات اور اس کی محبوبات ہیں مرغوبات ہر آدمی کو چاہتے ہیں یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے کھانے میں آدمی کو چاہتے ہوتی ہیں پینے میں چاہتے ہوتی ہیں پہننے میں چاہتے ہوتی ہیں رہنے میں چاہتے ہوتی ہیں لباس میں چاہتے ہیں سواری میں چاہتے ہیں شادی کے سلسلے میں چاہتے ہیں چاہتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے انسان کا سینہ دوسرے اس کی محبتیں ہیں بیوی کی محبت بچوں کی محبت تجارت کاروبار من پسند مکان بنانا قرآن پاک میں ایسی آٹھ چیزوں کا بیان ہے جو انسان کو مرغوب ہیں اور ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ گزارے کا سامان ہے جو دیا گیا ہے جو تمہارے لیے محبوب کیا گیا ہے ایک مصلحت سے ذالک متاع الحیات الدنیا دنیوی زندگی کا متاع ہے یعنی گزارے کی چیز ہے گزارا ہو جائے اسے تمہارا متاع اصل میں کہتے ہیں استعمال کرنے کی چیز کو اور عجیب بات یہ ہے کہ اصلاً متاع اس کپڑے کو کہا جاتا ہے جس سے گرم برتن پکڑا جاتا ہے اور اس گرم برتن کی جو خصوصیت جس کو پیجے سے پکڑا جاتا ہے عموماً یہ ہوتی ہے کہ وہ استعمال کرتے کرتے میلا کچیلا غیر صاف ستھرا بھی لگتے رہتا ہے یعنی وہ کسی کا مرغوب نہیں ہوتا اس کی اہمیت نہیں ہوتی مگر اس کی ضرورت ہوتی ہے ارے اس کی کیا حیثیت ہے یہ تو جو ہے نا پھٹی ہوئی بنین ہے یہ تو پھٹا ہوا کھلتا ہے تو پھٹا ہوا تولیہ ہے جس سے ہم یہ پکڑ رہے ہیں اب آج کل آ گئے ہیں وہ پہننے کے گلوز ولوز پہلے کہاں تھے تو یہ تو پھٹی ہوئی چیز ہے بے قیمت چیز ہے اس کا کیا کرنا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے بلکہ گرم کپ گرم چیز پکڑے ہاتھ جل جائے گا اور اگر اس کو استعمال کر کے برتن پکڑیں گے تو ہاتھ تو نہیں جلے گا مگر وہ کوئی کام کی چیز نہیں وہ کوئی اہمیت والی چیز نہیں ہے تو سونا اور چاندی اور بیوی اور اولاد سواریاں یہ سب اللہ نے فرمایا یہ گزارے کے لیے متاع ہے یہ یعنی ان کو آپ کو چاہیے مگر وہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہوتی وہ اہمیت والی چیز نہیں ہوتی وہ گاڑی نہیں ہوگی تو آدمی جاپ کو کیسے جائے گا منزل کیسے طے کرے گا ضرورتیں کیسے پوری کرے گا مکان نہیں ہوگا تو سردی گرمی میں کیسے اپنے آپ کو بچائے گا بیوی نہیں ہوگی تو گھرستی کیسے ہوگی اولاد کیسے حاصل کرے گا खाना पीना नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा, माल ना हो, करेंसी ना हो। जहाब और फिजदा जो है ना वो करेंसी से ताबीर है, सोना और चांदी, काम नहीं चल सकता। लेकिन काम चलने की ज़रूरत की चीज़ होने के बावजूद इंतहाई बेअहम चीज़ है, बेकीमत है। अगर किसी आदमी को उससे मोहब्बत है तो उससे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं है। जो तवलिया पुरानी हो गई है, फट गई है जगह जगह से, ताकि उसके निकल गए हैं और इस्तेमाल करते करते यूज़ होते 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 बिल्कुल बेकारी के मंजिल पर पहुंच गई है, एक आदमी उससे अपना दिल लगा के बैठा हुआ है, मोहब्बत कर रहा है उसके साथ, फरिश्ते भी उस पर हंसते होंगे, दुनिया पूरी, आलम आखिरत पूरा हंसता है उस पर। इसलिए फरमाया दालिक मताउल हयात दुनिया, ये दुनियावी ज़िंदगी का सामान है, बरतने की चीज़ है। तो एक ये है कि एक ये चीज़ है जिसमें इंसान उलझा हुआ रहता है हमेशा, और दूसरी है अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम। इन दोनों में कशमकश होती है, वो इधर खींचता है ये इधर खींचता है, ये टकराव हर पूरी ज़िंदगी इंसान के साथ है, ता हयात है। और इसी में इंसान का इम्तिहान है, आजमाइश है हर इंसान की, मालदार की भी, गरीब की भी, आलिम की भी, जाहिल की भी, शहरी की भी, देहाती की भी, पढ़े लिखे की, बेपढ़े लिखे की, आमिर की, मामूर की, हाकिम की, महकूम की, मर्द की और औरत की, हर एक की ज़िंदगी में ये इम्तिहान लगा हुआ है। अगर ये इम्तिहान ना हो तो ना जन्नत की ज़रूरत है, ना जहन्नम की ज़रूरत है, ना सवाब ना अजाब। पूरा निज़ाम कायनात दरहम बरहम हो जाएगा अगर ये चीज़ ना हो। जैसे अल्लाह ने फरिश्तों को एक ही साइड रखी हुई है, कशमकश नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उनको अपनी तरफ खींचे हुक्म के मुकाबले में, इसलिए उनको ना जन्नत है ना जहन्नम। हालांकि लाखों साल से लगे हुए हैं बेचारे, करोड़ों सालों से लगे हुए हैं। अगर वो जन्नत में जाते भी हैं तो सवाबन नहीं जाते, जहन्नम में जाते भी हैं तो अजाबन नहीं जाते। जन्नत में भी जाते हैं तो सर्व करने के लिए, खिदमत करने के लिए, बशारत देने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए, वहाँ का दायरे के मैनेजमेंट है तो उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी है, उसका नाम रिजवान है। हदीस शरीफ में आता है कि जन्नत के दारोगा का नाम रिजवान है। ऐसे जहन्नम के अंदर भी बहुत फरिश्ते होते हैं, वहाँ सज़ा थोड़ी होती है। जैसे जेल खाने में जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो जेलर होते हैं, जेल के ऑफिसर जो होते हैं, उनको सज़ा थोड़ी है जेल में, वो तो इनाम में है वहाँ पे, उनको तो चेक मिलता है। तो ऐसे जहन्नम में भी बहुत फरिश्ते हैं और उनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी है, उसका नाम मालिक है। जहन्नम के दारोगा का नाम मालिक है, जहन्नम जन्नत के दारोगा का नाम रिजवान है, हदीस शरीफ में आता है। वना दो या मालिक लियक़्ज़ी अलैना रब्बुक, जहन्नम की जहन्नमी लोग पुकारेंगे कि ओ मालिक आप हमारे लिए अल्लाह पाक से दुआ कर दीजिए या बोल दीजिए कि आप वो हमारा फैसला कर दें, किस्सा ख़त्म कर दें। قال انكم ماكثون, उनकी तरफ से ये जवाब आएगा कि तुम्हें रहना ही है इसमें, ये तुम्हें रहना ही रहना। और हदीस में आता है कि ये जवाब 1000 साल तक पुकारने के बाद मालिक देंगे और इतना देंगे, لقد جئناكم بالحق واكثركم للحق كارهون, हम हक लेकर आ गए थे और हक को तुमने पसंद नहीं किया, तुम्हें ठहरना है। फिर उसके बाद में पानी का मुतालबा करेंगे, प्यास लग रही, प्यास लग रही, 1000 साल मुतालबा करेंगे। 1000 साल के बाद में उनको गर्म पानी दिया जाएगा और वो इतना खलता हुआ होगा कि जैसे ही वो जाएगा उनके पेट में तो होंठ अलग झुलसा देगा जाते जाते और पेट के आते पूरे कट जाएंगे। वह सुकुमान हमीमन फ़क़त्ता अमआहुम, गर्म पानी खलता हुआ पिलाए जाएंगे जिससे उनके आते पीस पीस हो, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, फिर सही होंगे वो, फिर ऐसे ही होगा। बहुत सख्त है जहन्नम के अजाब का मामला, बहुत सख्त है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए। तो हर कीमत पर उससे बचने की जो कीमत है वो अदा करना है इस दुनिया में, नाकाबिले बर्दाश्त है वो, हमारे लिए भी, बच्चों के लिए भी, उसकी जो भी कीमत बनती है वो अदा करना है इस दुनिया में। तो उनके लिए कोई सजा और जजा नहीं है फरिश्तों के लिए, सूरज और चांद के लिए लाखों सालों से लगे हुए हैं लोग। बहुत से फलासफा का कहना यह है कि जितने नफूस समाविया हैं इन सब के पास नफ्स हई है, जिंदा नफ्स है। वैसे तो कुरान पाक तो यह कहता है कि वही मिशन सब बेहमदी, हर चीज़ अल्लाह पाक की हमद सना और तस्बीह करती है। चांद को भी काम पे लगाया हुआ अल्लाह ने, सूरज को भी काम पे लगाया हुआ है। सूरज रोज़ाना इजाज़त मांगता है कि आज निकलना है कि नहीं निकलना है, दोबारा यानी दोबारा चक्कर मारना है कि नहीं मारना है। अपना पूरा सर्कल होने के बाद सजदा करता है, हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह पाक से इजाज़त मांगता है कि मुझे जाना है आगे नहीं जाना है। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें चलती होती हैं। और जब क़यामत करीब आएगी अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि जी नहीं जाना है आपको, पलट जाओ। तो बस सूरज जो है ना फिर बजाय मशरिक़ के मगरिब से निकलेगा, उल्टा चक्कर मार देगा, मगर उसके लिए जन्नत नहीं ना उसके लिए जहन्नम है। तो इंसानों के अलावा जितनी मखलूकात हैं उन सब में अल्लाह का अम्र है। आसमानों में अल्लाह का हुक्म नाजिल होता है, ज़मीन में अल्लाह का हुक्म नाजिल होता है। अल्लाह ने आसमान और ज़मीन से कहा कि मैं जो बात कहना तुमको लगाऊंगा, तुम खुशी से मानते हो या ज़बरदस्ती मनवाना है मुझे तुम्हें। तो आसमानों ने और ज़मीनों ने दोनों ने मिलकर कहा, ज़मीनें वमिन अल अर्ज़ मिस्लहुन्ना, सातों आसमान के साथ सातों ज़मीनें हैं, यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना, उन सब में अल्लाह का हुक्म नाजिल होता है। कहाँ हैं, अल्लाह का हुक्म कैसे नाजिल होता है, अभी बहुत टाइम बाकी है, निकालना है लोगों को खुद खोद के। अब क़यामत से पहले निकाल भी लेंगे इंशाल्लाह। لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, ताकि तुम जान लो इस बात को कि अल्लाह पाक हर शय पर कादिर है और अल्लाह पाक को हर शय का इल्म मुहीत है, इल्म मुहीत हासिल है। आसमानों और ज़मीनों चाँद और ज़मीन और आसमान ने कहा अतैना ताइईन इतिया तवान करा, कुरान शरीफ के अल्फाज हैं, क्या तुम मेरी बात मानो खुशी से या ज़बरदस्ती, मगर तुमको मानना पड़ेगा। आसमान से भी कहा, ज़मीन से भी कहा, कालता कहा इन दोनों ने यानी आसमान ने और ज़मीन ने, अतैना ताइईन परवरदिगार हम खुशी खुशी हाजिर हैं, फरमाइए जो हुक्म है। तो ज़मीन को जो काम लगाया वो कर रही है, आसमान को जो काम लगाया वो कर रहा है। सरे मुँह इन्हराफ नहीं करते, सरे मुँह माने बाल के बराबर, एक बाल के बराबर इन्हराफ नहीं करते, अलग नहीं होते, आगे पीछे नहीं होते, मगर ना अज़ाब है ना सवाब है बेचारों। क्यों, वहाँ पर कशमकश नहीं है, हमारे साथ कशाकशी है, इधर और इधर, इधर और इधर। और हुकुम की जो लाइन होती है वो ख्वाहिशात की लाइन से अलग है, असल में मिक्स मैच नहीं होती है वो, उसके साथ मुआफ़िकत नहीं है उसमें, वो मैच नहीं होने की वजह से ही रहता है ये मसला। ये आदमी हुक्मों की लाइन को इख्तियार करेगा अल्लाह के या ख्वाहिशात की लाइन को इख्तियार करेगा, इसका इल्म सीखना ज़रूरी है, इसका ज़ौक बनाना ज़रूरी है, इसकी हिम्मत सीखना ज़रूरी है, इसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जो जानेगा नहीं वो कर नहीं सकता, इसलिए इल्म सीखना ज़रूरी है। जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो नहीं कर सकता, इसलिए इल्म काफ़ी नहीं होता। खाली नॉलेज से अगर इस्लाम ज़िंदा हो चुका होता तो इस ज़माने में तो सबसे ज़्यादा ज़िंदा हो चुका होता। नॉलेज किसके पास नहीं, नॉलेज की मिसाल ऐसी है जैसे सूरज की रोशनी, सिर्फ सूरज की रोशनी से कोई आदमी चल नहीं सकता, अंदर एक रोशनी होना पड़ता है जिसको जो आंखों में होती है। जब आंखों की रोशनी हो तो फिर सूरज की रोशनी से फायदा उठाया जाता है। हमारे पेरेंट्स जो है ना अपने बच्चों के बारे में ये समझते हैं कि किसी तरह इन्फॉर्मेशन उनको दे दो, दीनिया की ये काफ़ी है, नादानी है बेचारों की, बात ली नहीं उन्होंने, उनको पता ही नहीं चला क्या सूरत हाल है, क्या ना अपने ऊपर कयास करके देखा कि यार मुझे भी बहुत सी मालूम है लेकिन मैं खुद ही अमल नहीं करता, तो इसको अगर मालूम हो गया तो ये क्या कर लेगा। इल्म पर अमल करने के लिए चाहे थोड़ा इल्म हो चाहे बहुत बड़ा इल्म हो, दोनों सूरतों में अमल करने के लिए अंदर एक कुव्वत और इस्तेदाद चाहिए, उसको ईमान की कुव्वत भी कहते हैं, उसको हिदायत का नूर भी कहते हैं, उसको ईमान का जज्बा भी कहते हैं, उसको ईमानी ताकत भी कहते हैं, उसके अलग अलग अल्फाज हैं। ये जब तक इंसान में नहीं होगा باہر کے علم سے فائدہ نہیں اٹھا، قرآن اور حدیث کا علم جو کہ سورج کی طرح ہے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اور اگر کوئی آدمی اچھا ہے، آنکھیں اس کی صحیح ہیں لیکن باہر کی روشنی نہیں ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آ رہا، لم یکد یراہا، اگر کوئی آدمی اپنا ہاتھ بھی نکالتا ہے سمندر کی کھائیوں میں بعض مرتبہ اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتا، کیسے چلے گا، راستہ کیسے طے ہوگا؟ تو جس آدمی کے پاس میں جذبہ ہو، مزاج ہو، ہمت ہو، جرت ہو، ایمان کی قوت ہو اور علم نہ ہو اس کے پاس، تو وہ بدعات میں، خرافات میں، گمراہیوں میں، غلط عقیدوں میں، غلط راستوں میں پڑے گا. سارے گمراہی فرقے، گمراہ فرقے پیدا ہونے کا سیکرٹ یہ ہے. اور اگر علم بہت پھیلا ہوا ہو لیکن اندر کی روشنی نہ ہو تو ہپوکریسی جنم لیتی، منافقت آ جاتی، بولیں گے ایک کریں گے، بولیں اسلام کیسا مذہب ہے تو سب سے اچھا مذہب ہے، عمل یار یہ بڑی مشکل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسی شخصیت ہے؟ بولے ان سے بڑی کوئی شخصیت نہیں. ان کا علم کیسا ہے؟ ان سے بڑا کسی کا علم نہیں. ان کی ثقافت اور کلچر کیسی، جو تہذیب انہوں نے دی، کہنے کے اس بہتر ثقافت اور معاشرت نہیں ہو سکتی. جو آپ نے وہ بتایا، کھانے کا، پینے کا، رہنے سہنے کا، گھر گھر گھریلو زندگی کا، نہیں اس سے بہتر نہیں ہو سکتا. آپ کی بات میں اور دنیا والوں کی بات میں کیا فرق ہے؟ تو کہنے لگے کوئی فرق ہی نہیں ہے دونوں میں، کوئی کمپیئر ہی نہیں کر سکتے آپ. آپ حبیب رب العالمین ہیں، آپ سید الاولین والآخرین ہیں، آپ رسول الرسل ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید ولد آدم ہیں، صاحب المعراج ہیں، صاحب الشفاعت الکبریٰ ہیں، صاحب المقام المحمود ہیں، صاحب الحوض والکوثر ہیں، آپ کا کیا تناسب ہے؟ تو بھائی ان کا راستہ تو کیوں نہیں کرتا بھائی اس پہ، تجھ سے کیوں ہے؟ بتائیں کیا، اب میں بڑا گنہ گار آدمی ہوں. اپنے گناہوں کا اقرار کرنا کافی نہیں ہوتا؟ جب گنہ گار سمجھ رہے تو بھائی ورک کرو اس کے اوپر کہ کیوں نہیں ہو پا رہی ایک بات. تو یہ جو حکم والی لائن پر آنے اور خواہشات والی لائن پر غالب ہونے کے لیے، مرغوبات والی لائن پر غالب ہونے کے لیے جو محنت کرنا پڑتا ہے، اس کا نام ہے ہدایت کی محنت، دین کی محنت. ہم سب کو کرنا پڑے گا، وہ بڑے چھوٹے، ادھیڑ عمر کے، بوڑھے، مصروف، فارغ، سب کو کرنا پڑتا ہے دین کی محنت. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی کی ہوئی محنت کام آ جاتی ہے دوسرے کو، جیسے کسی کی کمائی ہوئی دولت کام آ جاتی ہے دوسرے کو، مگر وہ اصول نہیں ہے کہ چونکہ دوسرے کی دولت کام آتی ہے لہذا میں کچھ نہیں کروں گا. ایسے ہی کسی کو ایسا ماحول گھر کا مل سکتا ہے کہ اماں بھی دیندار، بابا بھی دیندار، گھر میں سنت کا ماحول، ساری شریعت کی پابندی، نیک لوگ ہیں، نیک ماحول ہے، اتباع سنت کا جذبہ ہے، باہر کی گندگیوں سے محفوظ ہے، باہر کی ہوا نہیں ہے، باہر کی فضا نہیں ہے، باہر کا ماحول نہیں ہے، باہر کا انوائرمنٹ کچھ بھی نہیں ہے، میں سیف ہے، بچہ دیندار نکل گیا. یہ لک ہے، یہ نور علی نور ہے، میں خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے، اس کے اندر ایمانی جذبہ بھی آ گیا، قوت ایمان بھی اس کے پاس ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کبھی. مگر جب ایک عمومی ماحول بنتا ہے تو اس میں پھر یہ چیزیں رونما ہوتی ہیں، وجود میں آتی ہیں، عام طور پہ نہیں ہوتی. عام طور پہ محنت کرنا ہے مجھے اور آپ کو، ہر انسان کو محنت کرنا ہوگا دینی جذبہ، دینی ماحول لانے کے لیے، اور اپنے اولاد کو بھی محنت پہ لگانا ہوگا. یہ ہے وہ مضمون جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں، کہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، تمہارے بیوی بچے اور دوسری جگہوں پر دوسرے مرغوبات کا ذکر ہے، یہ تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں. اور ذکر یہاں پہ طاعت کے معنی میں ہے، حکم کے معنی میں ہے، اللہ کا حکم پورا کرنے سے غافل نہ کریں. بیوی کی وجہ سے اللہ کے احکامات مت توڑو، بچوں کی وجہ سے اللہ کے احکامات مت توڑو، کاروبار کی وجہ سے اللہ پاک کے احکامات مت توڑو. کل متعین للہ فہو ذاکر، جو اطاعت کرتا ہے وہ ذاکر ہوتا ہے. اصل حکم پورا کرنے والے کا نام ذاکر ہے، جو حکم پورا کرے گا وہ ذاکر ہوگا. بڑا فرق ہے دونوں میں، وہاں 5 منٹ کا فرق ہے، یہ اچھا ہے، ادھر سے 3 منٹ زیادہ ہو گئے تو بھی یہاں برابر ہی بتا دیں. کل متعین للہ فہو ذاکر، جو اطاعت کرنے والا ہوتا ہے وہ ذاکر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کا حکم پورا نہ کر رہا ہو اور ذکر کر رہا ہو، بات دیکھیں گے کہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں سر سے پیر تک، اور تسبیح ہاتھ میں لیے پھر چل رہی تسبیح، غافل ہے وہ غافل ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی روڈ کا قانون پڑھ رہا ہے کہ ریڈ لائٹ کے اوپر گاڑی روکنا जो है ना गाड़ी चलाना सही नहीं है, रेड लाइट पर गाड़ी चलाना सही नहीं है, पढ़ रहा है अल्लाह, हुकूमत का कानून पढ़ रहा है और रेड लाइट पर गाड़ी चला रहा है, तो क्या बोले? पुलिस ये बोलेगी कि भाई इसने बेचारा कानून याद कर रहा था, हुकूमत का जिक्र कर रहा था, गवर्नमेंट का जिक्र कर रहा था, लिहाजा इसको टिकट नहीं देना चाहिए, ये थोड़ी बोलेंगे। असल ये कि वक्त पे हुक्म भी पूरा नहीं किया तो याद करने से क्या फ़ायदा है? हुक्म इलाही को पूरा ला तो लेकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। इस वजह से मेरे दोस्तों भाइयों, दीन की मेहनत को अपनी मशगूलियत में शामिल करना है, अपने प्रोग्राम में शामिल करना है, और हर इंसान के ज़िम्मे है ये। इस मुल्क में तो स्पेशल है, पूरी दुनिया में ही है, यहाँ तो और भी ज़्यादा है। 80s में हज़रत मौलाना अली मियां साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए थे, MCC में उनका बयान भी हुआ था, उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि मुसलमानों, अमेरिका के मुसलमानों, इस बात को याद रखो कि अगर तुम दीन की मेहनत करते रहोगे तो तुम्हारा इस मुल्क में रहना जायज़ है, वरना हराम है यहाँ पर क़याम। दीन की मेहनत के बगैर वैसे डॉलर कमा के जीना चाह रहे हैं तो तुम अपने बच्चों को काफिर बनाना चाह रहे हैं, तुम अपने घर को काफिर बनाना चाह रहे हैं, तुम खुद भी कुफ्र में धकेले जा रहे हैं। दीन की मेहनत बहुत ज़रूरी है, तो मेहनत करने से मेरे दोस्तों ज़ौक बनता है, मिजाज बनता है, और आजकल दीन की मेहनत के नाम से जो चीज़ अवेलेबल है उसी को हम जमात का काम कहते हैं, उसी में सफ़र के लिए निकलना पड़ता है, मुलाकातें लोगों से करनी पड़ती हैं, ज़रा बे आराम होना पड़ता है, मुजाहिदा तो है ना, कुर्बानी तो है। जब आदमी अल्लाह के लिए तकलीफ़ बर्दाश्त करेगा तो सवाब उसी लिए तो बयान किया गया, उसका फ़ज़ाइल बयान किए गए, उसके खूबियाँ बयान की गई कि अल्लाह पाक को कितना प्यार आता है इस अमल के ऊपर कि इसके हर हदीस पर, हर हर चीज़ पर इनाम और सवाब रखा गया। और न करने वाले के लिए वाइद भी वैसे ही है कि अगर रह गए सज़ा है, नहीं मैं तुम्हें तो मुस्तज़ाफ था, मैं तो जना मजबूर था, मेरे साथ तो ये जॉब का मसला लगा हुआ, मेरे साथ ये बीवी बच्चों का मसला लगा हुआ है। इतना सख्त है कुरान पाक में इसके बारे में बयान कि मैं मौका नहीं है सुनाने का, बहुत सख्त है। आखिर में यहाँ तक कहा गया है कि तुमको किसने कहा था कि तुम ऐसी जगह रहो जहाँ की मशगूलियत तुमको दीन का काम करने से रोके, किसने कहा था? हम तो सुन भी नहीं सकते वो चीज़ें, या परवरदिगार कुछ भी हो जो भी ये कर लेंगे, मगर यहाँ से मत बुझाओ। अलम तकुन अर्दुल्लाह वासियतन फतुहाजिरू फिहा, तो इसलिए जो दीन की मेहनत है यानी खुरूज अल्लाह के रास्ते में, अपना भी अपने बच्चों का भी ज़रूर होना चाहिए, और उसमें जो दीन की मेहनत में करने के लिए निकले हुए लोग हैं उनको ठिकाना देना, उनको खिलाना पिलाना, उनके साथ मिलके काम करना, वल्लज़ीन आवौ वनसरू, ठिकाना दें और मदद करें, ये लोग कामयाब होंगे और ये अल्लाह पाक की रहमत के मुस्तहिक होंगे। ये दो ही तरतीबें होती थी मुसलमानों में, ये दो काम करने की, क्योंकि मैं भी जमात में निकला हुआ हूँ इसलिए जमात वाली तकरीर मैंने की। उसके बाद एक बात जो अर्ज़ करने की है वो ये है कि माशाल्लाह समर स्कूल, समर का टाइम आया हुआ है, समर स्कूल खुला हुआ है हमारे पास, बच्चे भी, बच्चों के लिए भी दाखिले हैं, ज़रूर शरीक कीजिए उसमें, माहौल में लाइए बच्चों को, फिक्र फरमाइए, अपने साथियों को, ख़ानदान वालों को भी मुतवज्जो फरमाइए। और तालीम बालिगान का भी इंतज़ाम है, आलिम का कोर्स है, शॉर्ट टर्म कोर्स है, और जन वाला मुख्तसर मुद्दती भी है, तो आपको जैसे सहूलत हो जितना वक्त आप दे सकते हो, आप भी यहाँ मुफ्ती हामिद साहब जो यहाँ के नाज़िम हैं मदरसे के, उनसे आप रुजू फरमाएँ तो वो आपको तरतीब बताएंगे, हमारे मंजूर भाई जो सेक्रेटरी हैं वो भी आपको बता सकते हैं, तो और फिर इदारे का जो ताउन करना है वो भी आपको मेरे दोस्तों थोड़ा सा करना है। इस साल से हम लोगों ने थोड़ा सा साथियों को यहाँ रखना भी शुरू कर दिया है, मकान करीब में लेके, अल्हम्दुलिल्लाह तआला के भाई यहाँ बोर्डिंग का हम इंतज़ाम करेंगे, तुम यहीं रह जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह यहीं से करीब में एक साहब ने मकान ख़रीद लिया है, उसके अंदर ये बच्चे हमारे जो यहाँ रहने वाले होंगे, खाने वाले रहने वाले होंगे, उनका भी इंतज़ाम शुरू किया गया, मगर वो बड़े होना ज़रूरी है, 17-18 साल के होंगे तो ही रखेंगे, छोटे बच्चों का सेटअप अभी काबू में नहीं आएगा। लेकिन उसके लिए हमको एक और चीज़ एक्स्ट्रा चाहिए, और वो ये है कि हमारा जो बेसमेंट है बहुत बड़ा है, पूरा है बेसमेंट माता का अल्हम्दुलिल्लाह, इसको हम काबिल इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा खर्चा है उस पर, तो थोड़ा उस बारे में फ़िक्र फरमाइए कि अगर कुछ इंतज़ाम हो, क्योंकि उसमें है इत्तेफाक से अस्बस्तास, नीचे अस्बस्तास है, तो वो अस्बस्तास का मामला बड़ा नाजुक रहता है यहाँ पे, तो वो जब तक सफाई ना हो और वो भी बल्दिया की तरफ से मंजूरी के साथ सफाई ना हो, इजाज़त नहीं होती वहाँ पे, तो उसकी सफाई के वास्ते अखराजात अच्छे खासे हैं, आप लिहाजा मालूम भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा उस पर वर्क फरमा लीजिए, वो काम करवा दीजिए, तो हमारे पास बेसमेंट पूरी काबिल इस्तेमाल होगी, अपने को भी काम आ सकती है दूसरों मौक़ों पर, ये बच्चों के भी काम आ जाएगी, तो इस काम में थोड़ा सा आप हजरात हाथ बटाइए, हिस्सा लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, सुन्नतें पढ़ी।